أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيمان بالغيب، اس سیریز میں سے ایمان بالآخرہ کے سلسلے کا ہمارا آج کا لیکچر کیا ہے؟ حسن خاتمہ کی علامات. کسی بھی شخص کے قطعی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ایک انسان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی انسان کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز ہوئی. ایک شخص میدان جنگ میں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جسم پہ زخم ہے، کسی نے اس کا یہ حال دیکھ کر کہا، کسی نے زندہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی. آپ نے کہا کہ یہ کس نے کہا، یعنی آپ کو اس کا یہ کمنٹ اچھا نہیں لگا. حالانکہ مسلمان کو ہر دوسرے انسان کے بارے میں خوشگمان ہونا چاہیے، لیکن یہ جو فتویٰ ہم دائر کرتے تھے نا، فلاں تو مرحوم ہیں، فلاں تو جی جنتی ہیں، یہ مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص اپنی تکلیف برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے قریب رکھے ہوئے ہتھیار سے خودکشی کر لیتا ہے. اللہ نہ کرے ہمارا کسی کا برا انجام ہو. اسی طرح ایک موقع پہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو جنتی ہے. آپ نے فرمایا، میں تو دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور وہ اس کے اوپر آگ کی اڑا دی گئی ہے. تو یہ دو باتیں کافی ہیں ہماری زبان کو بند رکھنے کے لیے. اللہ کے نبی تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یہ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، ہاں صرف جو وحی کی جائے وہی بولتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وحی کا حصہ تھی تو آپ کی میری بات کیا ہے؟ خاموشی. تو آج ہم اس محفل میں دیکھیں گے قرآن اور سنت سے کسی انسان کے انجام بالخیر، حسن خاتمہ کی کیا نشانیاں ہیں، کس کا انجام اچھا ہوا، کس کا برا ہوا. یہ بات بھی وہی بتائے گا جس نے ہمیں دین سکھایا. تو آئیے ذرا ترتیب سے لے کر قرآن کی آیتوں اور احادیث کو لے لیتے ہیں. لیکن اس وقت ہم سب پہلے تو دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا، اے اللہ مجھے برے خاتمے سے بچانا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال اپنے خاتموں کے مطابق ہیں. اس موضوع کی سنگینی اور اس کی سینسٹیوٹی اور حساسیت کے بارے میں ایک مثال دوں. سارا دن کچن میں کھڑے رہے آپ، یہ پکا وہ پکا، یہ کر وہ کر، کیونکہ آج دعوت ہے، مہمان آ رہے ہیں اور وہ بھی من پسند، یعنی میکے سے آ رہے ہیں، دوستوں میں پیاری سی دوستوں کی دعوت ہے. آپ یہ سب کچھ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں، آخر میں کیا ہوا؟ غلطی سے ایک سالن میں نمک دگنا ڈل گیا، دوسرا کھانا تھوڑا سا نیچے سے لگ گیا، جلنے کی بو آ گئی، تیسرا جلدی ہی میں ڈالنے میں ہنڈیا چولہے سے اتری گری گر گئی، اینڈ پہ دعوت کیسی ہوئی؟ آپ کی سارے دن کی محنت کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. بس آج آپ اور میں زندہ ہیں، اے الحمدللہ. اے اللہ تو ہمیں اس زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جہاں حسن خاتمہ ہے نا وہاں برا خاتمہ بھی ہے، وہاں برا انجام بھی ہے، بری موت بھی ہے. ایک الگ ٹاپک اس پہ الحمدللہ اس میں موجود ہے، لیکن اینڈ پہ اگر ہوا تو چند چیزیں بول بھی دوں گی. لیکن ہم شروع کریں گے قرآن اور سنت کی ان آیات کو لینا कि जिससे पता चलता है कि कौन अच्छे अंजाम से दो चार हुआ, और जो भी सुने उसके साथ साथ अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, शौहरों, भाई बहनों और प्यारों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा खात्मा अता फरमाना। जाना तो है ही ना, दुनिया से जाना तो है ना, हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हम जाएं और हमारे पीछे हमारी बुराइयां हो रही हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी प्यारी दुआ थी कि अल्लाह मैं तुझसे हुक्म मांगता हूँ, और वल्हिकनी बिस्सालिहीन, नेकों का साथ मांगता हूँ। एक तीसरी चीज़ उस दुआ में क्या है, वजअलनी लिसान सिदकिन फिल आखिर, कि अल्लाह मेरे बाद मेरा जिक्र खैर रखना, मेरे जाने के बाद लोग मेरा अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र करें। और अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र के लिए ज़रूरी है कि आपका खात्मा बिल खैर हो। एक और मिसाल दे देती हूँ, दुनिया की चीज़ों में बहुत सारे लोगों को इज्जत मिलती है, कोई फ़न के नाम पे, अदाकारी के नाम पे, गुलकारी के नाम पे, किसी को खेल कूद में, क्रिकेट, हॉकी, कोई ना कोई फील्ड है, बहुत इज्जत मिलती है। और बाद में आखिरी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हो जाता है, सारी इज्जत पामाल हो जाती है, लोग याद भी नहीं रखते, इंजाम बुरा हो जाता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों का एंड बहुत खूबसूरत हो। तो नंबर एक, सबसे पहली चीज़, अल्लाह के रास्ते में शहीद होना, शहादत, क्योंकि शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत की मौत पाना बड़ी सआदत और खुशबख्ती की बात है। कुरान पाक में शुहदा की फजीलत किस तरह से बयान की गई, सूरत आल इमरान आयत नंबर 169 से 171, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्लिह वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनेमतिम मिन अल्लाह वफ़द्लिम वअन्ना अल्लाह ला युदीउ अज्रल मुमिनीन। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं, इनको हरगिज़ मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपना फजल जो इन्हें दे रखा है, इससे बहुत खुश हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। इन लोगों के बारे में जो अब तक इनसे नहीं मिले, इनके पीछे हैं, यूं कि इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, वो खुश वक्त हैं अल्लाह की नेमत और फजल से। इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। ज़रा से इस आयत पे गौर कीजिए, हर एक का दिल करता है कि मरने के बाद उसका नाम जिंदा रहे। हमारे कल्चर में लोग अमूमन औलाद की तमन्ना क्यों करते हैं, कि हमारे बाद हमारा नाम रहे। लोग यादगारें कायम करते हैं, कोठियाँ बनाते, हवेलियाँ बनाते, बुर्जियाँ बनाते, कोई अच्छा काम कर दें तो उस पर अपने नाम का कतबा लिखवाते, क्यों, हमारा नाम रहे। चलिए आज 24 है ना, 2024, आज से 4 साल पीछे किसी का बहुत नाम था, आज उतना तذकरा है। 10 साल पीछे जाइए, 2014 तक जो लोग दुनिया में थे, उनके चर्चे थे, उनकी धूम थी, क्या आज उनका नाम है, लोग भूल जाते हैं आपको। आज मरे कल दूसरा दिन, आज मरता है बंदा, बहुत लोग दुखी रोते, खबर, न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इधर से उधर बुलेटिन जारी हो रहे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथे दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। शहीद वो है जिसको मरने के बाद भी मुर्दा नहीं कह सकते। अब सवाल ये है कि शहादत किसको मिलेगी, पहले इसको समझिए। अफसोस के साथ एक बात कहूँ, आज उम्मत मुस्लिमा की माओ को शौक नहीं रहा कि उनके बच्चे शहीद हों, आज की बीवी को ये शौक नहीं रहा कि उनके शौहर शहीद हों, और इसी तरह आज की बहन और आज की बेटी और सब कुछ इल्ला माशाल्लाह। आजकल हम एक सीरीज कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रही है, नेक माओ का मिसाली किरदार। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, खाना बनाते हुए जब बिल्कुल कुछ भी लिखने का मूड नहीं, सिर्फ सुनना है, ड्राइविंग में कहीं भी, आप उसके पहले लेक्चर से शुरू कर दें सुनना। उम्मे इस्माइल की कहानी, उम्मे मूसा की कहानी, हजरत मरियम की माँ की कहानी, यानी तरतीब से कुरान और हदीस की और नबियों की, सहाबियात की, किस्से कहानियों से आज के दौर में, बिल्कुल उस बुक का मैं लास्ट पार्ट पढ़ा रही हूँ आजकल, रिवर्ट्स, जो रिवर्ट माएँ हैं ना न्यू मुस्लिम, उनकी कहानियाँ। और एक ही बात समझ आई है कि बच्चे आज भी अच्छे हैं, माएँ बदल गई। हमारे प्यारे नबी की सहाबियात लोरियाँ देती थी, अपने बच्चों को ख्वाब दिखाती थी। वो मुआवज़ और माज़ जोफ़रा के बेटे थे रदी अल्लाहु अन्हा, शौके शहादत का शिकार थे, जज्बा जिहाद था उनके दिलों में। और आज क्या हाल है, एक सिस्टर ने मुझे खुद बताई, टीचर है वो, किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में रहती हैं, इस्लामिक स्कूल की टीचर हैं, जैसे सैटरडे या संडे स्कूल। कह रही, हमने बच्चों को नया लिबास किसी को पहना देखकर जो दुआ दी जाती वो सिखाई, इल्बिस जदीदन इश हमीदन वमुत शहीदन। आपको भी आती होगी, किसी के अच्छे कपड़े देके हावा ना किया करें, दुआ दे दिया करें। शादी में अगर हर बंदा दूसरे को ये दुआ ही देता रहे, तर्जमा भी पता हो, तो दिलों के बोझ कीने दूर हो जाए। दुआ क्या है, इल्बिस जदीदन, तुम नए कपड़े पहनो, इश हमीदन, तुम्हारी तारीफ वाली जिंदगी हो, वमुत शहीदन, और तुम्हें मौत आए शहादत की। कहने लगी, एक से दो बार ये जब दुआ हुई तो माओ में से कुछ माएं आ गईं। कहने लगी, आप मेरे बच्चे को क्या दुआएं सिखा रही हैं, क्यों भी क्या हुआ ये? कहती, ये दुआ ये किसकी है? कहा, ये नया लिबास पहनने की, माँ को पता भी नहीं। अच्छा, ये हदीस की दुआ है? कहती, मैंने उनको दिखाया, ये देखे वो। कहने लगी, पहले दो लफ्ज ठीक है, ये आज की माँ है, इल्ला माशाल्लाह, सारी नहीं, आप जैसी बादशाह और माए नहीं है ऐसी माशाल्लाह। कहने लगी, इल्बिस जदीदन सिखाओ, कपड़े पहनो, खूब पहनो, इस शमीदन तुम्हारी तारीफ है, लेकिन ये शहादत की और मौत की बातें हमारे बच्चों को ना बताओ, इनको डिप्रेशन हो जाएगा। याद रखिए, आज आप यहाँ आकर बैठे हैं ना, ये भी शहादत की तरफ एक कदम है आपका। बंदे मोमिन की पूरी जिंदगी शहादत हक की गवाहियां देते हुए गुजरती है, इसी रास्ते में फिर एक दिन मौत भी आ जाती है। ये जो इल्म का सफर है ना, ये शहादत का सफर है। तलब इल्म जो होता है वो फरिश्तों के परों पे होता है, इल्म की तलब के रास्ते में जो मौत आ जाती है ना, उसको शहादत की मौत कहते हैं। आपके मर्द कस्बे हलाल के लिए निकलते हैं ना घर से, हलाल कमाई के लिए, ये हलाल रास्ता शहादत का रास्ता है। आप दीन के दाई हैं, गली गली कूचा कूचा नगर नगर फिर कर आप अल्लाह के नाम की दुहाई देते हैं, व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब का नाम बुलंद करो। जब आप अल्लाह के नाम को बड़ा करने के लिए निकलते हैं ना, तो आप उस रास्ते के शहीद हैं। मोहरें लगाता है एक मोमिन, कुन तुम खैर उम्मतें उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के लिए तैयार किया गया, निकाला गया, पैदा किया गया कि तुम लोगों को बुराई से रोको, नेकी का हुक्म दो, उनको अल्लाह से जोड़ो। ये उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी जब शहादत हक वाली होती है ना, तो फिर वही माएँ, अल्लाह के नबी के दौर की माँ, एक औरत को खबर मिलती है, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया, सब्र किया, अल्लाह के नबी ठीक है? जी वो ठीक है। का फिर खैर है? बाप बेटा चार करीबी मर्द उस औरत के घर के शहीद हुए, तो उसने एक शेर पढ़ा कि अगर अल्लाह के नबी जिंदा है तो फिर खैर है, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा शौहर जो भी है, उसकी तो सिर्फ मुझे जरूरत थी, लेकिन इस नबी की अभी इंसानियत को जरूरत है। तो आज आप माँ होने के नाते पेरेंटिंग की बात भी सीख के जाइए, अपने बच्चों के अंदर शौके शहादत डालिए। अल्लाह दुनिया में थोड़े थोड़े अरसे के बाद مسلمانوں پر ایسے حالات لاتا ہے جس میں آپ کو یہ دکھتا ہے. یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ شہید مردہ ہی نہیں ہے, رزق کھا رہے ہیں, خوشخبریاں لے رہے ہیں. ہاں لیکن ایک چیز, شہید کے سارے گناہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں سوائے ایک قرض کے. یعنی شہید کے قرض کے علاوہ باقی سب گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واس کے لیے کھڑے ہوئے. اب امیجن کیجیے کیا وہ محفلیں ہوتی ہوں گی, اللہ کے نبی سنانے والے اور صحابہ کرام سننے والے. کیا پن ڈراپ سائلنس نہیں ہوتا ہوگا؟ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے بیان فرمایا کیا, ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال. اللہ کے رستے میں جہاد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تمام اعمال میں سب سے افضل ہے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بتائیے, اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہوں کا اس سے کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, اگر تم اللہ کے رستے میں اس حال میں قتل ہو جاؤ کہ تم جزا و فضا نہ کرو, شور نہ مچاؤ, بلکہ صبر کر رہے ہو, اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہو, دشمن کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو, تو تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. اچھی, اور یہ روایت ہے مسلم کی 1885. اب آپ ذرا سا سوچیے, یہاں اللہ کا شکر ہے آپ بہت پیارے ملک میں رہتے ہیں, اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد رکھے. ذرا سا قدم اٹھا کر, ایڑیاں اچھال کر, ذرا سا آپ کسی غیر مسلم ملک کا رخ کریں, بچہ بچہ قرض میں جکڑا ہوا ہے. اسٹڈی لون سے شروع کرتے ہیں, پڑھنے کے لیے قرض لو, پھر ساری عمر اس کی قسطیں ادا کرتے رہنا. چلیے قرض تو تھا ہی, پھر جب اس میں اللہ کی نافرمانی انٹرسٹ شروع ہو جائے, پھر گھر لینے کے لیے, گاڑی لینے کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ سارا کچھ لینے کے بعد دل میں سکون اور خوشی ہوگی کہ نہیں. تو آج اپنے لیے یہ نیت کیجیے, یہاں بھی یا دنیا میں کہیں سے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات, اپنے آپ کو لون فری کیجیے. قرض جو ہے نا, یہ بے سکونی ہے, اور خاص طور پہ پھر وہی بات ہے کہ اس میں جب نافرمانی بھی ہو. اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے. ایک اور حدیث ہے حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی صحابی نے ان سے کہا, کیا کہا؟ ان رجلن قال یا رسول اللہ ما بال المؤمنون ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید, قال کفا ببارقتی ببارقت السیوف علی راسہ فتنہ. ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, تمام مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے, لیکن شہید کو کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ تو آپ نے فرمایا, شہید کے لیے تو راہ جہاد میں سر پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے. سبحان اللہ, یہ نسائی کی روایت ہے 2055. تو کیا پتہ چلا, شہادت گاہ الفت میں کیا ہے؟ قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان کا جو اٹ موسٹ گول ہے نا زندگی کا, وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رستے میں قبول ہو جاؤں. تو پہلی چیز, دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی شہید ہو, چاہے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, آج غزہ میں کوئی شہید ہے, یا پوری دنیا میں, ان پہ ترس نہ کھائیں, وہ اس دنیا کے فتنوں سے بہت اچھی جگہ پہ چلے گئے. آزمائش تو دوسروں کی ہوتی ہے. چلیے دوسری چیز, حسن خاتمہ کس کا؟ جو بغیر شہید ہوئے شہادت کے درجے پہ پہنچ جائے. ایک تو شہید وہ ہوتا ہے نا جو میدان جنگ میں شہادت کی موت مرتا ہے, اس کے اجر اور خاتمہ بالایمان کی تو علامت ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا, شہید ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو کسی بیماری, آفت, میں بھی آپ کو ایک لسٹ دینے والی ہوں, انگلیوں پہ لکھ لیجیے گا. یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں, क्योंकि दिल सबका करता है शहीद होने को, लेकिन सिर्फ उंगली कटा के, तलवार गले पे नहीं, सिर्फ शहीद हो जाए लेकिन मैदाने जंग में ना जाए। वो कहते हैं ना कि शौक बहुत है शहादत का, मगर सुना है कि जान से मार देते हैं, है ना। तो ये हमारे जैसे कमजोर ईमान वाले, मुनाफिक नहीं कहते, निफाक भी ना, अल्लाह ना करे कैसा हो, कमजोर ईमान वालों के लिए एक लिस्ट तैयार है कि जो बगैर मैदाने जंग में गए, बगैर तीर तलवार तोड़े दुनिया से जाएं, और अल्लाह के नबी की अहादीस की रोशनी में उनकी मौत को भी शहादत की मौत करार दिया जाए, और ये भी उनके लिए खात्मा बिल खैर है। तो इनकी लिस्ट लीजिए, जाबिर बिन अतीक रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले के अलावा भी 7, यानी 7 डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो शहीद हैं, और वो कौन से हैं लिख लें, ताउन के मरज से मरने वाला, पेट की बीमारी, नंबर 2 डूब कर मरने वाला, नंबर 3 फालच से मरने वाला, फिर 5, चौथा पेट के मरज से मरने वाला, जलकर मरने वाला, किसी चीज के नीचे दब कर मरने वाला, और 7वीं बच्चे को जन्म देते हुए मरने वाली औरत। इसी तरह एक रिवायत में है फेफड़ों की बीमारी, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, उसके मरज से मरने वाला भी शहीद है। ये जो पहली लिस्ट है ये अबू दाऊद से आपको दी है और इब्ने माजा से, और दूसरी अहकामुल जनाइज किताब में ये हदीस भी मौजूद है। अच्छा, कितने हो गए? 8। और 9वां वो जो अल्लाह के रास्ते में गया। 10वां पता कौन है? बड़ी खूबसूरत बात है, जो अक्सर मैदाने जंग में जाता है, अक्सर जिहाद के लिए निकलता है, फिर खैर से वापस आ जाता है, और फिर एक दिन तबई तौर पे उसकी फितरी सी मौत आ जाती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी शहीद है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अपने बारे में ये बात कहा करते थे कि मैं तो इस नीयत से निकलता हूँ कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं और शहीद होके जन्नतों में पहुंच जाऊं, और मैं शहीद ना हूं और वापस आऊं तो जब मैं मदीना की गलियों में फिरता हूँ तो लोग मुझे के वो देखो गाजी जा रहा है, दुनिया में जन्नती फिर रहा है। यानी दुनिया से चले गए शहीद हो गए, नहीं गए तो भी जिंदा है, तो भी शहादत का अजर है। और अबू हुरैरा ही की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम शहीद किसे समझते हो, तो सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है। आपने फरमाया तब तो फिर मेरी उम्मत के शुहदा की तादाद बहुत ही कम होगी। सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, फिर शुहदा कौन है? तो आपने फरमाया मन कुतिल फी सबीलिल्लाह फहुव शहीद, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, यानी जिसको वाकई हम भी शहीद समझते हैं। वमम मात फी सबीलिल्लाह फहुव शहीद, और जो अल्लाह के रास्ते में तबई मौत मर गया वो भी शहीद है। ये रिवायत भी आप अगर देखना चाहें तो सही मुस्लिम में और इब्ने माजा और मुस्नद अहमद में मौजूद है। क्या पता चला? आप जरा सुपर लीजिए अपने। आपको पता है कि कुछ मौजू ऐसे हैं जो बहुत कम डिस्कशन में आते हैं, ये मौजू भी उसी में से है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत अल्लाह के रास्ते में जान देने को खूबसूरत कर देती है। दो तरह के दुनिया में मुजाहिद आपको दिखेंगे, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और मुजाहिद फी सबीलिद दुनिया। एक अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद करने वाला, भाग दौड़ करने वाला, जिस तरह एक आप आज खुद भी हैं। याद रखिए मैदाने जंग में तो आखिर में जाएंगे ना, वो तो किताल है जब तलवार पकड़ते हैं, जिहाद का मरहला तो कलम पकड़ने से शुरू होता है। इल्म का रास्ता, दीन का रास्ता, सारा खानदान एक रुख पे जा रहा है, सारा मुआशरा आपको कुछ और ही रंग दे रहा है, सोशल मीडिया तो आपको जिंदगी का कोई और ही रंग दिखा रहा है, हर तरफ एडवर्टाइजमेंट, दुनिया 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 दुनिया, और आप कहते हैं नो, मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। चलो तुम इधर हवा हो जिधर नो। मेरा तो एक अपना ही स्टाइल है, मैं नहीं देखता कि दुनिया किधर जा रही है, मैं तो उधर जाता हूँ जिधर मेरा रब मुझे कहता है। ये सारे शहादत के दर्जे हैं, ये जो आप इतनी मोहब्बत से इल्म लेने बैठे हैं ना, इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं, ये भी शहादत का रास्ता। शर्त एक है कि इस इल्म को लेकर अमल में ढालने की नीयत हो और इससे दूसरों को नफ़ा देने का शौक हो, तो दुआ किया करें कि अल्लाह शहादत की मौत दे। इसी तरह हदीस में कुछ और लोगों के बारे में भी ये फजीलत मिलती है, और वो क्या कि कोई अपनी जान, माल, दीन और इज्जत, चार चीज़ें। इसमें एक सवाल भी किसी का आया था, उसका भी जवाब मिल जाएगा आपको। खुदकुशी के बारे में भी लोग सवाल करते हैं, सुबह भी एक लेक्चर था उसमें भी ये मौजू था थोड़ा बहुत। चार चीज़ें लिख लें, जान बचाते हुए, माल बचाते हुए, दीन बचाते हुए और इज्जत की हिफाजत करते हुए। अगर कोई मारा जाता है तो वो भी शहीद है। अल्लाह ना करे घर में चोर आ गया, सब कुछ दे दे उसको? नहीं, रिजिस्ट कीजिए, उसके साथ मुकाबला कीजिए। अल्लाह ना करे अगर जान चली गई तो शहादत है। एक औरत है, उसकी इज्जत पे कोई हाथ डालता है तो क्या करे? डिफेंड करे, और उस दिफा में अगर दुनिया से चली गई तो शहीद है। कोई आपकी जान ले रहा है, कोई आपकी इज्जत पे हमला करता है। इसी तरह एक बड़ी प्यारी हदीस है, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चली ना तो मैंने उस वक़्त कहा अल्लाह ताला मुझे इसमें मुखलिसीन में शामिल करना। और वो क्या, जिस बंदे को सिद के दिल से, सच्चे दिल से शहीद होने का शौक हो और वो अक्सर शहादत की दुआ भी करे, वो अपने घर के बिस्तर पे भी मरे तो उसको शहीद का सवाब है। तो दिल में तो ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन सच्ची ख्वाहिश। इसी तरह से अगली चीज, किसी भी नेक अमल पर मौत आना, यानी जब आप दुनिया से जा रहे हो तो आप उस वक्त कोई नेकी कर रहे हो, ऐसे शख्स को भी हुस्ने खातिमा की खुशखबरी है। इसमें हजरत खुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्तिगा वजहिल्लाहि खुतिमा बिहा दखल अल जन्ना। जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर इसी के साथ इसका खातिमा भी हो गया, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन साम यौमन इब्तिगा वजहिल्लाहि खुतिमा लहू बिहा दखल अल जन्ना, और जिसने अल्लाह की खातिर एक दिन का रोजा रखा फिर इसी हालत में इसे मौत आ गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन तसद्दक बी सदकत इब्तिगा वजहिल्लाहि खुतिमा लहू बिहा दखल अल जन्ना, और जिसने अल्लाह की रजा की खातिर कोई चीज सदका की फिर इसी वक्त उसे मौत आ गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। कितना आसान है, आपके मेरे पास जो जिंदगी एक अमानत है, चलिए छोटी सी एक्टिविटी करें, अभी तो जिंदा है, अभी हम मरना नहीं चाहते। हाँ ये कहते हैं अल्लाह जब कभी मौत आई ना तो ईमान वाली मौत देना, लेकिन अभी जीने की तो तैयारी कीजिए। एक जुमला लिख लें, जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए। अभी हम जी रहे हैं, अपने आप को मुबारक दें, खुशी का इजहार करें, क्योंकि ये जो उम्र है ना, जिंदगी, ये बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर का वाकया है कि दो लोग एक ही दिन में इकट्ठे मुसलमान हुए, ज़ाहिर है उनकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए गए, बराबर 0 मीटर। फिर कुछ अरसे के बाद उनमें से एक अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, और उसके एक हफ्ते के बाद दूसरा तबई मौत मरा, नेचुरल डेथ। अल्लाह ताला ने एक सहाबी को ख्वाब में दिखाया कि जो बाद में तबई मौत मरा है वो शहीद होने वाले से पहले जन्नत में दाखिल हुआ है, यानी उसका मुकाम बढ़ गया। सहाबी ने वो ख्वाब अल्लाह के नबी को सुनाया और साथ ही सवाल भी कर दिया कि अल्लाह के नबी, हम तो ये सोचते हैं कि शहीद का दर्जा ज्यादा है, जबकि यहाँ तो मामला उलट है। तो आप कहते अल्लाह के नबी ने क्या खूबसूरत लफ्ज बोले, फरमाया ऐना क़यामुहु ऐना सियामुहु, कहाँ गए उसके वो क्याम जो उसने उसके बाद एक हफ्ते में किए। सिर्फ 8 दिन की या 7 दिन की जिंदगी बड़ी, उन 7 दिनों में जो 5 नमाजें पढ़ी, रोज़ा भी रखा बीच में, कोई नेकी की, उसने उसका मुकाम और दर्जा एक हफ्ता पहले शहीद होने वाले से बढ़ा दिया। तो प्यारी बहनों, अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, करते भी होंगे तो मज़ीद कीजिए, क्योंकि आज हमारे पास सांस आ रहे हैं जा रहे हैं। इस वक्त किरामन कातबीन हमारे अमाल लिख रहे हैं, दिल धड़क रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, आंख भी देख रही है, कान सुन रहा है, जुबान बोलती है, क्यों ज़ाया करें? आप अपने सेलफोन की बैटरी को ज़ाया करें, दोबारा चार्जर पे लगाएं, फिर वो बढ़ जाती है। आपकी मेरी जो ज़िंदगी है ना, इसकी वैल्यू की, गेट मोर फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से और हासिल कीजिए। आप अपनी थोड़ी सी नेकी पे क्यों खुश हैं? आप हफ्ते में एक दिन की नेकी पे क्यों खुश हैं? महीने में एक बार की नेकी पे क्यों खुश हैं? हम ये देखते हैं ना, और लोगों लोगों को भी बड़ी हमारी नेकियां दिखती हैं, वहाँ कितना नेक है, कितने उम्रे कर रहे हैं, कितने हज करे, हाय कितने दर्स देते, हाय फलां देखो। तो एक जुमला लिख लें, लोगों को वो दिखता है जो हम कर रहे हैं, अल्लाह को वो भी दिखता है जो हम कर सकते थे पर नहीं कर रहे। अपने आप को इस असूल के अंदर सेट करके देखिए, सवाल लिख लें, मैं जो नेकी कर सकती थी या हूँ, क्या मैं वो करती हूँ? क्या मैं अपनी छोटी सी नेकी पे खुश हूँ बहुत बड़ी नेकी की बजाय? आज सुबह का लेक्चर अमेजिंग क्राउड था, माशाल्लाह, आपकी तरह बेहतरीन शौक से सुनने वाले लोग थे उस लेक्चर में। तो किसी ने सवाल किया जिसने वाकई मेरा दिल खुश कर दिया, वो उसका मफहूम भी यही था कि हम अपनी छोटी छोटी नेकियों को बड़ी नेकी में कैसे बदलें। आप खुद सोचिए, हम सब क्या चाहते हैं? कम खर्च वाला नशीन, ऐसे ही चाहते हैं ना? अकलमंदी भी यही है, थोड़े पैसों में अच्छी शॉपिंग कीजिए, महंगी चीज सस्ते भाव खरीदें। होम इकोनॉमिक्स, हमारी माए नानियाँ दादियाँ कैसे थीं, उधेड़े को फटे को सी लेती थीं। आज के बचे हुए सालन को कल चावलों में डाल के खिचड़ी बना देनी, सुगड़ती, कपड़ा जल जाता था उसके ऊपर फूल काढ़ लेती थी कि वो नया लगे। ये जिंदगी का असूल है। आज अक्सर चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक दो। हमारी गफलत से अगर आपके फ्रिज में एक टमाटर भी ज़ाया हो गया ना, कल उसका हिसाब होगा, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। और आपको पता है, आज के डॉक्टर्स ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है, और वो क्या कि एक इंसान अपनी एवरेज उम्र पूरी जब करता है, यानी एवरेज एज 60 70, औसत दरमियानी ज़िंदगी यूज़ करके जब दुनिया से जाता है ना, तो अपने ब्रेन का सिर्फ 5% यूज़ कर चुका होता है, 95% उसके साथ कब्र में चला जाता है। आप चाहेंगे आप ज़ाया हो जाए? आप ब्रेड लेकर आए, 2 4 6 पीस खाए, बाकी पीछे कहीं डल गई, 4 6 दिन बाद अलमारी खोली, ओ खो फफूंदी लग गई। कुछ आता है? फ्रिज में धनिया ऐसे ही गल गया, पुदीना काला हो गया, मिर्चें भी फफूंदी वाली हो गई, नहीं चाहते ना? तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। आज हमारे पास अपनी मैक्सिमम करेंसी जमा करने का पूरा मौका है। और कभी अपने आप को नेक ना समझें, सॉरी, हम थोड़ा सा पढ़ और पढ़ा लेते हैं, लोग भी एक अजीब बात है हमें इज्जत देनी शुरू हो जाते हैं, जी 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 जी, फिर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, हमारी टोन बदल जाती, बात का अंदाज बदल जाता, और फिर अल्लाह रहम करे हम अपने सिवा सब को ही गुनाहगार और जहन्नमी साबित करते हैं। अपनी नेकियां हमें बहुत चमकती दिखती हैं। साहबे कराम का मामला क्या था कि अपने गुनाहों को बड़े दिखते थे और दूसरे की नेकी बड़ी दिखती थी। हमें अपनी छोटी सी नेकी बड़ी दिखती और अपने गुनाह कहते क्या है ना, फिर सब करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत होगी। आगे चलते हैं, नंबर 4 पॉइंट, किस का खात्मा बिल खैर है? अल्लाह की राह में जिहाद कुछ लोग कर रहे थे और ये उनका पहरा देने लग गया, यानी राह जिहाद में पहरा देते हुए मौत आई। हदीस ले लीजिए, फुजाला बिन उबैद रजी अल्लाह से रिवायत है, اللہ کے نبی نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابتا. یہ لفظ بڑا پیارا ہے, مرابتا فی سبیل اللہ فإنه ينمى له عمله الى یوم القیامت ویعمن فتنة القبر. مرنے والے شخص کے عمل کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مرے, اس کے عمل کا اجر اسے تا قیامت ملتا رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے 1621 اور سلسلہ تو صحیحہ کی روایت 1140 پیج پہ موجود ہے. کیا پتہ چلا کہ کسی بھی جگہ پہرا دینا. میں یہاں چھوٹی سی بات کروں گی, بات تو جہاد کی ہو رہی ہے. صحابہ کرام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو کچھ صحابہ اسائن کیے جاتے تھے, ان جگہوں پہ کھڑے کیے جاتے تھے جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہوتا تھا. آپ سبھی نے ماشاءاللہ سنا ہوگا غزوہ احد کا قصہ, 50 لوگ عبداللہ بن جبیر کی معیت میں جس درے پہ لگائے تھے, وہ کیوں لگائے تھے؟ کہ وہ ادھر حفاظت کریں گے کہ پیچھے سے دشمن نہ آ جائے. اب کوئی شخص جو مرابط ہے, دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, اس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اور کیا چاہیے, رشک آتا ہے اور قبر کا عذاب نہیں ہے ایسے شخص کو. اللہ ایسے بندے کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے, اور جب مرنے کے بعد اجر ملے تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. آپ 30, 40, 50, 60, 70 سال نیکیاں کر کے دنیا سے چلی گئیں اور آپ کی وہ نیکی باقی رہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, ذوالنورین لقب, خلیفہ ثالث, خلفۂ راشدین میں تیسرے نمبر پہ, ان کی نیکیاں کیسی تھیں؟ آج بھی سعودی عرب کے ایک بینک میں ان کا اکاؤنٹ موجود ہے. کس کس کو بتائیے بات, رشک نہیں آتا؟ لیکن کیا یہ اکاؤنٹ بعد میں ان کے کسی نے کھولا؟ اپنی زندگی میں اپنے اکاؤنٹ کھول کر چاہیے. الاخرہ بینک انلمیٹڈ ہے. آج بھی حرم کی جو توسیع ہوتی ہے, جو اس میں ایکسپینشنس ہو رہی ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر, جی بتائیے. جی, اپنی زندگی میں انہوں نے ایک باغ خریدا, پھر اس کی فصل کو ڈونیٹ کیا. اس کی پوری ہسٹری ہے, میں نے ایک کلاس میں پورا آرٹیکل پڑھ کے سنایا تھا. اب جب وہ پھل آتا ہے اس سے, تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو نفع کو لینے کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولا گیا. ہر سال پھل آ رہا ہے, ہر سال پھل آ رہا ہے, اور وہ جب پیسہ جمع ہوا تو اس دور کے علماء نے سوچا کہ اس کا کیا کیا جائے, اور آخر میں فیصلہ کیا ہوا کہ اس پیسے کو خانہ کعبہ اور حرمین کی وسعت جو ہو رہی ہے نا, اس میں ڈال دیں. آج بھی جو کام ہو رہا ہے, کیا پتہ عثمان کے پیسوں کا ہو. اس پہ تو میں کہتی ہوں جنت میں جا کے عثمان غنی سے ہم نے جا کے ضرور کمپیٹ کرنا ہے. جی, ایک فندق عثمان بھی ہے اور اوپر لکھا تھا وقف لے لو عثمان. آپ کا دل نہیں کرتا؟ ابھی رستے میں 2-3 میسیج, سوال جواب ہوتے ہیں نا, اس کا جواب دے رہی تھی میں, کیونکہ دل ہوتا ہے کہ جو وقت ہے کر لوں نا. تو کسی ایک کا سوال تھا کہ مرنے کے بعد پھر ناروے کے قانون کے مطابق وراثت بٹے گی یا اسلامی قانون, کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بیٹے بیٹی میں 2.1 کی ریشو ہے. ناروے کہتا ہے کہ نہیں, ٹک 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 ٹک, 5 بیٹے بیٹیاں ہیں تو سب کو برابر میں بانٹ دو. اور ساتھ سوال ان کا کچھ اس قسم کا تھا کہ آدھا گھر ان کو اللہ کے رستے میں دینا ہے تو پھر وہ آدھا اس وقت دیں گے, کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو میرا اس میں ایک ہی ان سے سوال کے بدلے میں سوال تھا, اب کیوں اپنے مرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں اپنی مثال دوں, میں آپ سے کہوں, میں جب مر جاؤں نا تو اس کے بعد پھر مجھے پڑھانے کا ثواب ملے, میں جب مر جاؤں نا تو پھر کچھ لوگ میرے لیے دعائیں خیر کریں. تو بھی آج میں کیا کر رہی ہوں, میں موت کا انتظار کروں گی؟ نہیں, میں نے انہیں کہا کہ آپ نے جو کام کل کرنے آج کریں, اور یقین کریں اس وقت جو نفسی نفسی ہے نا, کیا قیامت کے میدان میں ہوگی. भाई बहन की दुश्मनियाँ, भाई भाई की दुश्मनी, चचा भतीजे की दुश्मनी, देवर भाभी का झगड़ा वरासत में, एक रुपया ना छोड़ के जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यकूलुल अब्दु माली माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसके माल में से तो सिर्फ वो माल है नंबर एक जो खा लिया, जीथड़े बन गया, खा लिया वो जिस्म से गंदगी बन के निकल गया, जो पहन लिया पुराना हो गया, और तीसरा जो अपने हाथ से आगे भेज दिया, जो आखिरत के बेल्ट पे मिलेगा। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान जाते हैं तो सामान बुक कराते हैं ना, तो फिर वहां जाकर ढूंढते हैं ना, टैग होते हैं ना, इधर से दिए ही नहीं तो उधर से क्या लेंगे। आप जाके कहते हैं मेरा लगेज नहीं आया, वो कहते हैं आपने क्या डाला था, कहते डाला तो कुछ नहीं, कोई क्लेम बनता नहीं बनता। एक असूल जिंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से है, आई होप नथिंग आई ओन नथिंग, इंग्लिश है, मैं उर्दू बताती हूँ इसकी। मेरे जिम्मे किसी का कोई कर्ज नहीं है, ओफ करना कहते हैं, समझ गए ना, मैं मकरूस नहीं हूँ, मैंने किसी के एक रुपया भी नहीं देना, एक असूल, और साथ ही आई ओन नथिंग, मेरी मलकियत में कुछ भी नहीं है, ना मैंने किसी का देना है ना मेरे पास कुछ है, एक रुपया आपकी जेब में जो है ना वो भी अल्लाह का है, आपकी ज़रूरत है आप अपने इस्तेमाल में कर लें, खा लें पी लें, ए अल्लाह ये सारा तेरा अफ। खर्च करने में ये सबसे बड़ा दर्जा होता है, यसअलूनक माज़ा युन्फिकून, खालल अफ, ज़रूरत से ज़्यादा सब दे दो, अल्लाह को ये दर्जा पसंद है, कोई जायदाद ही नहीं, हिसाब किसका। और आपका ख्याल है ये करने से आप भूखे नंगे प्यासे, वल्लाही फिर आप अल्लाह की जिम्मेदारी बन जाते हैं, दूसरों से अच्छा खाते, दूसरों से अच्छा पहनते, दूसरों से अच्छी जगहों पे रहते। तो ज़िंदगी में इस असूल को बनाइए कि हमने अल्लाह का बन जाना है, मेरा और मेरे रब का एक खाता, सांझा खाता किसको कहते हैं, शेयरिंग अकाउंट, यहाँ भी होता होगा, मियाँ बीवी का एक ही अकाउंट होता है। ये जो बात है ना कि जो अल्लाह के रास्ते में पहरा दे, आपको तक इस वक्त दीन इस्लाम को पहरेदारों की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में खंदकें खोद रहे हैं, हमारी आज नस्लों के जहनों में इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ी जा रही है। ये जो आप इल्म हासिल करते हैं ना कुरान सुन्नत का साफ सुथरा निखरा हुआ, ये आपको इस काबिल करता है कि अगर आप कहीं भी कोई बात दीन की सुने तो आप परख सके कि कहने वाला सही कह रहा है कि गलत। फिर अगली निशानी क्या है, बड़ी खूबसूरत है, सोचें क्या होगी, जुमे की रात या जुमे के दिन में मौत आना, ये किसी के भी हुस्ने खातिमा की अलामत है। इसकी दलील क्या है, अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमाती औ लैलतल जुमाती इल्ला वकाहुल्लाहु फितनतल कब्र। आप में से किस किस को कब्र से डर लगता है, मुझे तो बहुत ही लगता है, दुआ करें अल्लाह में जुमे के दिन या जुमे की रात मौत दे दे। फरमाया जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत होगा अल्लाह तआला इसे कब्र के फितने से बचा लेंगे। ये तिर्मिजी की रिवायत है 1074। अब ये मेरे आपके बस में है नहीं है ना, तो फिर किससे कहेंगे, अल्लाह से। अब सवाल लिखिए, अच्छा फिर जुमे के दिन कोई काफिर मरे, फासिक मरे, खोटा मरे, तो भी वो जन्नत में जाएगा, जवाब अल्लाह को गलती नहीं लगती, अचानक नहीं होता मामला, अल्लाह ने पहले से सोचा होता। अगली निशानी ये हमारे कल्चर में बड़ी फेमस है, वफात के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक मिलना। हजरत माज रज़ील्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन का ना आखिर कलामी ही La ilaha illallahu dakhala al janna, jiska aakhri kalam la ilaha illallah hoga wo jannat mein dakhil kiya jayega. Sochiye zara, Allah ke raste mein nikalne wale se leke aakhri kalam kalme ka zuban se aa jana, ye bhi inshallah jannat ke jane ki nishani banegi. ये अबू दाऊद की रिवायत है 3116 नंबर की. अच्छा, ये किसको आएगी? यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताने लगी हूँ, जरा और तवज्जो कर लें. आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल तो हम सबका चाहता है. इसी मौजू पे ना एक पूरा लेक्चर अलग से भी है, हुस्ने खातिमा, उसमें दुआएं भी सिखाई थी, लेकिन यहाँ इसको समझिएगा. मन का ना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा. इसीलिए बात लोग कहते हैं ना कि जो मरने के करीब होता है उसको कलमे की तलकीन कीजिए. और एक रिवायत भी अबू सईद खुदरी और अबू सईद और अबू हुरैरा से आती है कि लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो. लेकिन अब सवाल जो है वो गौर से सुनिए, क्या ये कलमा अचानक जुबान पे आ जाता है? दो बातें ले लें. किसी ने इमाम इब्ने कय्यम रहमाखुल्ला से ये सवाल किया था कि कलमा ला इलाहा जुबान पे क्या मरते वक्त कैसे आता है. अब उनकी एनालॉजी देखिए, तस्वर में लाइए पहले एक मिसाल. खुदा न खास्ता घर में चोर आ जाए और आपने घर में इधर उधर सोना चांदी छुपाया रखा है, पैसा भी है, चाबियों के गुच्छे हैं, और वो एकदम गन दिखा के कहता है जो है दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा. क्या करता है बंदा? वो भी उगल देता है जिसको पता नहीं होता, ये चाबियां ले लो, वो वहां रखा है, वो रखा है, वो रखा है, मुझे छोड़ दो. अब सुनिए मिसाल. कहते हैं कि बंदा है मोमिन के दिल में सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह होता है. मलकुल मौत को देखकर खौफ की वजह से वो जुबान पे आ जाता है, बर्तन में से वही निकलता है जो बर्तन में होता है. कोशिश करें और दुआ करें हमारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक हो जाए. वल्लज़ीना आमनू शद्दु हुब्बलिल्लाह, आपको एक दावत दूंगी, अगर आपके लिए ज्यादा दूर ना हुआ तो जरूर आइएगा. ये मंडे जो आएगा, कमिंग मंडे, तो 1 o'clock से 4, यानी 3 घंटे की हमारी क्लास है, लेक्चर ही आपके लिए. तो उसमें हम सूरत इखलास कर रहे हैं. पिछली पूरी क्लास में सिर्फ एक लफ्ज़ हुआ था, अल्लाहु के बाद अस्समद. अस्समद की 10 एक जगह और 8 शायद दूसरी जगह उसकी मैंने मुख्तलिफ तफसीरें बताई थी. रोज पढ़ते हैं, हमें नहीं पता कुल वल्लाहु अहद सुलुस कुरान क्यों है. फिर उसमें हम वीडियोस और 3-4 चीज़ें, बड़ा खूबसूरत लेटर होता है, और ये कारवान में होगा. अब वो जगह आपसे कितनी दूर है मुझे नहीं पता, नाम सुनना हुआ कारवां कंपाउंड, उसके मेन हॉल में होगा मंडे को इंशाल्लाह ताला. फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि वो क्लास ऑनलाइन नहीं मिलेगी और यूट्यूब पर नहीं आएगी बाद में. चलिए अगली अलामत, वफात के वक्त पेशानी पर पसीना नमोदार होना. हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनु यमूतु बि अरक़िल जबीन, मोमिन को मौत के वक्त पेशानी पर पसीना नमोदार होता. तिरमिज़ी की रिवायत है, ये नसाई में भी है, इब्ने माजा में. आपको अपना कोई प्यारा याद आ रहा? नाना, नानी, दादा, मौत के वक्त उनके पसीने छूट रहे हो, ये खुशबख्ती की अलामत है. उनके लिए अच्छा गुमान रखिए. और जो मुझे सब बातों में से ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, वो बात जिसके लिए मैं और आप आज कोशिश करेंगे तो ये होगी, और वो क्या है, जिसकी नेकी की लोग गवाही दें, ये उसके हुस्ने खातिमा की अलामत है. अल्लाह अकबर कबीरा. कोई मरा है, लोग जमा हुए और अच्छे कलेमात का इजहार करते हैं. حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی. یہ سن کر آپ نے تین مرتبہ فرمایا وجبت وجبت وجبت, یعنی واجب ہو گئی واجب ہو گئی, یعنی گارنٹیڈ 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 ان شارٹ. پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی برائی بیان کی, پھر بھی تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت وجبت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ وضاحت طلب کی کہ اللہ کے نبی کیا واجب ہو گیا, تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پر جنت اور دوسرے پہ جہنم واجب ہو گئی. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ آواز خلق نقارۂ خدا, بندہ اللہ کے نگاہوں میں جیسا ہوتا ہے لوگوں میں بھی اس کی وہی شہرت ہو جاتی ہے. اللہ قبولیت ڈال دیتا ہے, محبت ڈال دیتا ہے. سورت مریم کے بالکل آخر میں بھی آتا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو نیکی کی گواہیاں دنیا میں لیجئے تاکہ وہاں ملے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 2200, یعنی 2200 نمبر کی. حضرت عمر نے جب وضاحت طلب کی تو آپ نے فرمایا منس نئی تم, منس نئی تم علیہ خیرن وجبت لہ الجنہ, و منس نئی تم علیہ شرن وجبت لہ النار. جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2643, ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا, ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا, لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. پھر اتنی ہی دیر میں ایک اور جنازہ گزرا تو لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے, اور اس مرتبہ حضرت عمر نے یہی فرمایا کہ وہ واجب ہو گئے. تیسرا جنازہ گزرا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے, حضرت عمر نے اس پہ بھی کہا کہ واجب ہو گیا. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی, تو وہی بات. اب اگلی بات بڑی اہم ہے. آپ نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی یا برائی پر, اچھائی پر چار لوگ گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. صحابہ نے فوراً پوچھا اگر تین لوگ گواہی دے دیں, آپ نے فرمایا تین پر بھی جنت. کہا اگر دو مسلمان گواہی دے دیں, کہا اسے بھی جنت. کہتے پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے دے تو کیا اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا کہ نہیں. آپ اپنے لیے اور میں اپنے لیے سوچوں. یہ 2643 نمبر ہے بخاری کی روایت. اپنے آپ سے پوچھئے میرے گھر والے میرے بارے میں کیا کہیں گے. بہت ہی آخری جملے میں آپ کو سوچ دینے والے بولنا چاہتی ہوں, اب اس کے بعد آپ لوگ بولیں گے اور میں سنوں گی. میرے گھر والے میری کیا گواہی دیں گے, پہلا سوال لکھئے. نمبر دو, میری ملازمائیں میڈز ماسی, کپڑے دھونے والی, برتن دھونے والی, صفائی کرنے والی میری کیا گواہی دے گی. تیسرا سوال لکھئے, میرے سسرالی رشتے میری کیا گواہی دیں گے. پانچویں گواہی لکھئے, جن کے ذمے میرا کوئی حق تھا اور میں نے ان سے حق وصول کرنے میں جو رویہ اختیار کیا, کل وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے. ڈریے, سوچئے, اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ لائیے. ایک میں نے انگلش ناول, ناول سے مراد ایک آرٹیکل تھا, تو اس میں ایک ایسے پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی, جیسے یہ انسٹیٹیوٹ یا ادارہ کوئی بھی, تو جب صبح میں ورکر اندر آئے تو مین ڈور کے اوپر ایک نوٹ لگا ہوا تھا کہ آج ایک شخص کا انتقال ہو گیا جو ہمارے اس ادارے کی ترقی کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا, اور اس کا فیونرل اسی بلڈنگ کے نیچے فلاں جگہ بیسمنٹ میں ہو رہا ہے, تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ باری باری وہاں جائیے اور اس کا دیدار کر لیں. اب جو آئے ایک دم اس کو شوق لگے اور تجسس بھی ہے کہ وہ کون تھا جو ہماری گروتھ سے یا ہماری ترقی کے رستے میں رکاوٹ تھا, اور جب وہ نیچے جائے तो वहां वाकई कफन रखा हुआ है, बारी बारी अंदर जाके निकलना था। जो अंदर जाए कफन में देखे, चीख मारे और बाहर निकल जाए। एक से दो, दो से चार, कौन था कफन में? आईना था। हर एक उस आईने में अपनी तस्वीर दिखती थी। आई एम द रीजन, अगर कहीं तरक्की नहीं हो रही मैं उसकी वजह हूँ, कहीं को मसला है उसकी वजह मैं हूँ, कहीं कम तरक्की हो रही है उसकी वजह मैं हूँ। अपने खिलाफ खुद गवाहियां दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अंतुम शुहदा उल्लाह की फिल अर्दी, ए मोमिनो तुम जमीन में अल्लाह ताला के गवाह हो। तो अल्लाह ताला हमें अपने और दूसरों के बारे में अच्छा गवाह बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।